चले ये परिंदे, हंस ले अब जवाह है। उड़ चले ये परिंदे, हंस ले अब जवाह है। रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां है। कदम से कदम मिल चले आप हैं साथ में, जब चले है उमंग है उल्लास। एक नई सोच नया विश्वास, एक नई
मुझे थोड़ा थोड़ा करके सजा दो, मुझे अपने जैसा निर्मल बना दो। तुम बिन कालिख कौन धो पाए, भगवान चलो हम एक हो जाएं। जी हां दोस्तों, बहुतों की ऐसी चाहत है, लेकिन उस खुदा को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुद, खुदा और आध्यात्म की खोज में यह सफर, जिसका नाम है नई सोच नया विश्वास। मैं अमित वाधवा इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक के सफर में हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी भ्रांतियों पर चर्चा की, जिसके संतोषजनक उत्तर भी हमें प्राप्त हुए। लेकिन अभी और ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनके समाधान पाना बाकी है। वैसे भी जब हम आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं तो स्वयं को जानना जरूरी हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी राजयोग शिक्षिका से जिनके जीवन पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। आइए स्वागत करते हैं रशिया से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी का। दीदी, नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू, हैप्पी टू सी।
दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि संतोष दीदी रशिया से आकर हमारे बीच में पधारी हैं। दीदी जी का जीवन ईश्वरीय ज्ञान और अनुभवों से परिपूर्ण है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके अनुभवों का लाभ हमें भी अवश्य मिलेगा। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए दीदी जी के जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं।
मनुष्य जीवन की संपूर्णता निर्भर करती है जीवन में संजोए अनुभवों पर। जीवन में जिसने जितना अधिक शांति और सुख का अनुभव किया है, या कहें संतोष का अनुभव किया है, उसे उतना संपन्न माना गया है। ऐसे में अपने नाम के अनुरूप ही संतुष्टता की मूरत माने जाने वाली ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन का जीवन मिसाल है। सन 1964 में एक अत्यंत ही धार्मिक व सम्माननीय कुकरेजा परिवार में जन्मी संतोष बहन बचपन से ही बहुत दयालु थीं। वह अपने आसपास के गरीब बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें भोजन कराती व पढ़ाया करती थी। साथ ही अनेक प्रकार के जीवन उपयोगी कार्यशालाओं में भी वह बढ़ चढ़ कर भाग लेती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान में 1983 में वह स्नातक हुई। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रशियन भाषा में 3 वर्ष तक अध्ययन किया व शास्त्रीय नृत्य, बाटिक व सिरेमिक आर्ट जैसे कई विधाओं में प्रशिक्षण लिया। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को और बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन 1983 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। 6 वर्ष भारत में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार में उनकी भूमिका को देख संस्था ने उन्हें 1990 में रशिया भेजा। संस्था की समाज सेवाओं के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के अधिकारियों ने संस्था को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण इलाके में भूमि प्रदान की, जिस पर संतोष बहन ने अथक प्रयास कर वर्ष 2000 में लाइट हाउस का शुभारंभ किया। वर्ष 2014 में इसके दूसरे भाग माइट हाउस का शुभारंभ आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी ने किया। इन परिसरों में आध्यात्म द्वारा लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए विविध आयोजन समय प्रति समय होते रहते हैं। रचनात्मकता व दूरदृष्टा की धनी संतोष बहन ने डिवाइन लाइट नाम के एक सांस्कृतिक दल का निर्माण किया, जिसके प्रतिभावान रूहानी कलाकारों ने अब तक सारे विश्व में कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। वे इस दल की निदेशिका हैं। आध्यात्म द्वारा मानव जीवन को सफल व श्रेष्ठ बनाने के लिए संतोष दीदी जी ने अनेक अनूठे प्रयोग किए हैं। 1995 में सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को ग्लोबल विजन फॉर बेटर वर्ल्ड पुस्तक भेंट किया। 1997 में से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 1999 तक 3,500 लोगों ने लाभ उठाया। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टो 2000, विमेन एंड फैमिली वैल्यूज, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप आदि अनेक कार्यक्रम किए। न केवल रशिया अपितु बाल्टिक क्षेत्र के देशों के साथ साथ जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे 25 से भी अधिक देशों में संतोष बहन ने आध्यात्मिकता का प्रचार किया और लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई। उनके इन्हीं गतिविधियों के लिए उन्हें समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। 2014 में उन्हें गोल्डन स्वैलो सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि रशिया के उत्तम नागरिक कार्यक्रम में दिया जाता है। उनके मानव कल्याण के आध्यात्मिक विषयों पर अनूठे समझ के लिए उन्हें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल स्टडीज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी FCE कैलिफोर्निया जैसे ख्यातिमान विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन का व्यक्तित्व प्रेरणाओं की खान है, जिससे न केवल भारत अपितु सारा विश्व प्रेरित हो रहा है। संतोष बहन का जीवन इसी बात को स्पष्ट करता है कि करुणा मानव जीवन का श्रृंगार है और संतोष इस जीवन का सार है।
दीदी जी, इस फिल्म के माध्यम से आपके त्याग और तपस्या का पता चलता है, लेकिन एक प्रश्न भी मेरे मन में आता है, वो ये कि एक नई संस्कृति में आप गए थे और वहां के नए लोगों को आपको आध्यात्म समझाना था, ये किस प्रकार संभव हुआ?
यहां से जब निमंत्रण मिला ब्रह्मा कुमारी को रशिया के अंदर में राजयोगा मेडिटेशन सिखाने के लिए, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो यहां पर सुनने में आई कि वहां पर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है
जी।
इसलिए कृपा करके भगवान शब्द यूज नहीं करना। तो उस समय मुझे ये थॉट जरूर आया था कि अगर भगवान का नाम ही नहीं लेना है तो मेडिटेशन कैसे सिखाएंगे या राजयोगा की बात कैसे करेंगे। बट वहां पर जाने के बाद, लोगों को देखने के बाद और फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स में ये जो भावना बिठाई गई थी एकदम रिमूव हो गई। हाउ?
कैसे?
क्योंकि बहुत सालों से, अबाउट 70 इयर्स मोर देन दैट, वहां पर जो कम्युनिज्म चल रहा था, तो जिसके अंदर ऑफ कोर्स नो रिलीजियस थॉट कैन बी प्रोपोगेटेड और ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम भी आप ओपनली एडहेयर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का प्यार जो है लोगों के साथ और लोगों का जो प्यार भगवान के साथ है, ये इतनी सटल चीज है, उसका एक अद्भुत नजारा वहां देखने को मिला कि पहले पहले जो गैदरिंग्स थी 600-700 लोग, वो जब आकर के बैठते थे, सुनते थे और उनको जब हमने ये स्पिरिचुअल टीचिंग सुनाने शुरू की, तो लगता था कि वो अंदर से आत्माओं की जो प्यास है, वो चाहे आप बाहर से कितने भी लॉज लगाइए, कितने भी आप बंदिश लगाइए, लेकिन वो आत्मा फिर भी प्यासी है। सो इट वॉज वेल एक्सेप्टेड, बट बिकॉज वहां कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जिससे कि आप आध्यात्मिक जीवन जो है रेगुलर बेसिस पर जी सकें
जी,
तो कुछ बातों के लिए हमको मेहनत करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध भोजन।
हाँ जी।
क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए पहले आपका शरीर भी तैयार होना चाहिए कुछ हद तक
जी।
और अगर भोजन शुद्ध है और मांस, मछली, मीट, मदिरा ये सब नहीं है, तो सहज रीति से कर सकते हैं, जैसे कि भारत में होता है
जी।
लेकिन वहां पर तो मैं कहूंगी 200% नॉन वेजिटेरियन।
आप लोगों को भी दिक्कत आई होगी दीदी?
हम जब गए तो प्रश्न तो था
जी
कि खाएंगे क्या, क्योंकि वेजिटेबल की बात करते ही वहां पर दो तीन चीजें ही बस हैं, गाजर और गोभी और ये सब, लेकिन हमने उस बारे में नहीं सोचा
जी।
हमें ये तो पता था कि हम अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनको मेडिटेशन करने के लिए किस प्रकार से ये जो चेंज है ये अडॉप्ट करने में इनको फिजिकली भी कोई परेशानी ना हो और मेंटली भी अच्छा बेनिफिट कर सकें, तो उसके लिए हमने काफी ट्रेनिंग्स दी, बेनिफिट बताए कि कैसे वेजिटेरियन फूड हेल्प करता है, कैसे बनाया जाए। क्योंकि पहली मीटिंग में जब हमने वेजिटेरियन फूड का जब उनको परिचय दिया तो वो पूछते थे तो अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या
जी,
दे सिंपली डोंट नो कि अगर ये नहीं खाना तो खाना क्या है
जी।
तो वो समझते हैं वेजिटेरियनिज्म मीन्स गाजर उठाई और खाया बस।
ओके,
हाउ टू मेक दैट, हाउ टू कुक दैट, तो इस प्रकार से हमने एक एक बात का ध्यान दिया। ऐसे ही वहां पर अर्ली मॉर्निंग गेटिंग या फिर जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए रेगुलर जो ज्ञान सुनने की जरूरत है उसके लिए टाइम, क्योंकि वहां पर ठंडी बहुत होती थी, -20-30 टेम्परेचर है और 6 मास से भी ज्यादा सूरज नहीं होता था, और सूरज नहीं है और -30 है, आपके घुटनों तक बर्फ है और आप 3-4 कोट डाल करके आपको सुबह 6-7 बजे अगर मॉर्निंग असेंबली में क्लास करनी है तो ऐसी ऐसी बातों के लिए मेहनत करनी पड़ी, बट इट वॉज वर्थ और उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो मेरा ये भाव चेंज हुआ कि जो अध्यात्म है वो सिर्फ ईस्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सल वैल्यू।
क्या बात,
एंड इट डेफिनेटली हैज टू बी टेकन टू द होल वर्ल्ड, लेकिन उस तरीके से जैसे कि वो लोग उसको डाइजेस्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एंड दैट गेव मी मोर फेथ इन दोज प्रैक्टिसेस व्हिच आई एम डूइंग नाउ, सो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी पर्सनली।
जी जी दीदी, आपका अनुभव सुनकर के बहुत अच्छा लगा, और वो बात तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी जो आपने कही कि स्पिरिचुअलिटी केवल ईस्ट या भारत के लिए ही नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। दीदी पर एक बात जहन में और आती है कि जब भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से कोई आते हैं तो आत्मा शब्द पर बहुत जोर देते हैं, ये आत्मा आखिर क्या है?
क्योंकि यहाँ पर हम सारी शिक्षा ही वो आध्यात्मिक शिक्षा है ना, तो आध्यात्मिक शिक्षा है ही आत्मा या स्पिरिट सोल जो इनविजिबल है। अभी आप मेरे सामने बैठे हो,
हाँ जी,
और अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप कौन हो
तो मैं अपना नाम ही बताऊंगा आपको, मैं अमित हूँ।
क्या आप हमेशा से ही एंकरिंग करते थे, आप एंकर हो हमेशा से ही कि एंकर बने?
मैं एंकर बना।
बना और हमेशा एंकर रहेंगे?
शायद
नहीं,
कल
शायद
को कुछ
नहीं,
और भी कर सकते
शायद
हैं।
नहीं
जी,
तो एंकर बनने से पहले भी आप थे?
हाँ जी।
और एंकर ना होने के बाद भी आप रहेंगे?
हाँ जी।
तो वो जो पहले भी था और इस प्रोफेशन के बाद भी रहेगा वो मैं कौन है? ये जो मैं एंकर हूँ
जी,
ये मैं एंकर हूँ, ये टेम्पररी है
जी।
मैं डॉक्टर हूँ या मैं लड़का हूँ, आप कहेंगे मैं मेल हूँ, मैं शीशे में ऐसा देखता हूँ, तो ये जो मेरी आइडेंटिटी है ये बन रही है, चेंजिंग है, ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है
जी।
लेकिन एक है जो इससे पहले भी थी और इसके बाद में भी है
जी।
अभी आपकी फिजिकल एज क्या है?
36
है आप। तो आप जब 25 था तब भी आप थे कि नहीं थे?
बिल्कुल
60 के हो जाएंगे तो भी होंगे।
हाँ जी।
तो जो 25 ईयर में भी था 60 ईयर में भी होगा, ये जो मैं है एक परमानेंट मैं है।
हाँ जी।
ये आत्मा का वाचक है, तो मैं वास्तव में एक स्थायी सत्य सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ। क्योंकि ये जो मैं शब्द है ये चेतना का प्रतीक है। अब मैं आई तो मैंने कहा हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, लेकिन क्या ये जो टेबल है इसने आपको गुड मॉर्निंग किया?
नहीं, हम इन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
तो टेबल है, ऑब्जेक्ट है,
हाँ जी।
मैं भी हूँ, लेकिन हम दोनों में अंतर है कि मुझे अपने होने का आभास है। टेबल है लेकिन टेबल को होने का आभास नहीं है, इसलिए ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। लेकिन हम ये क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि ये जो शरीर है,
हाँ जी,
दिखाई दे रहा है, और चेतन आत्मा, मैं बोलने वाली, दिखाई नहीं दे रही। तो हम समझते हैं कि मैं शरीर बोल रहा हूँ
जी।
अभी ये अनुभव करना बहुत अच्छा है, इसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है।
दीदी, आपने कहा कि मैं व्यवसाय नहीं हूँ, हम अलग अलग प्रोफेशन नहीं है
जी।
हम जड़ वस्तुओं से अलग हैं
जी।
हमारी आत्मा बोलती है
जी।
तो आत्मा, परछाई, प्रेत, ये समान है या अलग अलग है?
आत्मा जो है वो चेतन सत्ता, एक लाइट है
जी,
बिंदु है,
हाँ जी,
सोचने की शक्ति है, हाँ। लेकिन उसको ना जानने के कारण, या डर के कारण, या कभी कभी कोई विजन होने के कारण, उस लाइट को परछाई के रूप में कभी देखा तो वो प्रेत नाम दिया है, लेकिन वास्तव में हम सब शुद्ध आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं हैं। और इसका अनुभव करना बहुत आसान है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं,
हाँ जी,
तो आपका फोकस कहाँ है?
मैं आपको देख रहा हूँ, आपके शरीर, आपके चेहरे को देख रहा हूँ।
तो एट ए टाइम आप पूरे शरीर को देखते हुए आप देखेंगे, आईज को भी देखते हैं, कान को भी देखते हैं, डिटेल्स को भी देखते हैं,
हाँ,
लेकिन इनमें से मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी आंख
जी।
मैं आंख नहीं कहती, मैं कहती हूँ मेरा मुंह। मैं मुंह नहीं कहती, तो मैं मुंह नहीं हूँ, तो वो मैं कौन? मैं आंख नहीं हूँ, मेरी आंख है, तो मैं कौन? तो आप मुझे तो देख ही नहीं रहे, आप तो मेरी आंख को देख रहे हैं, आप मुझे तो देख ही नहीं रहे, मेरे मुख को देख रहे हैं
जी।
तो ये जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ जिससे कि आप मुझे देख सके।
दीदी, बात तो विचारणीय है, मगर हम एज अ होल सोल पूरे शरीर को अपने आप को शायद मैं बोल देते हैं
जी। और उस कारण से क्या होता है कि हम शरीर समझने के कारण, जिसको देह कहते हैं,
हाँ जी,
देह मानने के कारण, इस देह अभिमान के कारण कई प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर रहते हैं। क्योंकि अगर आप काले शरीर के हैं
जी,
या आप वेस्ट में पैदा हुए हैं, या आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं, या आपका शरीर वैसा है जैसा दिखने में अच्छा नहीं है, तो ये जो भावनाएं हैं, घृणा की भावना है
जी,
या द्वेष की भावना है, वो इमोशनली हमें डिस्टर्ब रखती हैं। तो इसलिए जब हमें अपना सत्य परिचय हो जाता है कि ये शरीर नहीं, आत्मा है, तो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको अनुभव करने के लिए मैंने जो मेडिटेशन से टेक्निक सीखी है, इफ यू वांट आई कैन टेल यू।
अरे बहुत अच्छा होगा दीदी।
यू सी जस्ट लैंप बिहाइंड यू। अब ये जो बल्ब है उसके अंदर करंट है। अब बल्ब की कोई एज होगी, दो साल पहले खरीदा होगा
जी,
लेकिन करंट की क्या एज है? करंट हैज नो एज, करंट इज ऑलवेज देयर, राइट? यू कैन क्रिएट इट एनी टाइम। सो इसी प्रकार से जो शरीर है उसका बर्थडे है और उसका डेथ डे है। यू नो योर बर्थडे
जी,
बट यू डोंट नो योर, आई डोंट नो माई डे ऑफ गोइंग, बट इट इज देयर,
यस,
एंड इट कैन बी एनी टाइम। सो ये इसकी एज है, लेकिन आत्मा की जो एज है वो नहीं है, क्योंकि आत्मा है करंट। और हम अपने को बल्ब समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि मैं कभी ना कभी मर जाऊंगा, इस कारण से हम डरते हैं
जी।
और अगर हम समझेंगे कि मैं करंट हूं, और करंट का कोई लैंग्वेज नहीं होती है, करंट को आप अमेरिकन कहेंगे, करंट को इंडियन कहेंगे, करंट को ऑस्ट्रेलियन कहेंगे, बल्ब मेड इन ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, बल्ब मेड इन इंडिया हो सकता है। सो बॉडी इज मेड इन इंडिया, बॉडी इज मेड इन रशिया, बॉडी इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड सोल मेड इन एटर्नल। एटर्नल है, अविनाशी है, हमेशा है। तो जैसे ही हमको ये पता पड़ता है तो मेरा आपके प्रति जो दृष्टिकोण है वो ऊपर हो जाता है। इट्स कॉल्ड हायर कॉन्शियसनेस। क्योंकि मैं अभी तक आपको इंडियन अमेरिकन, रशियन या हिंदू, मुस्लिम, सिख या छोटा बड़ा करके देख रही थी, तो अभी मैं आपको एक स्थायी, अविनाशी, चैतन्य, सत्ता, शुद्ध आत्मा के जो रूप में देखती हूँ, तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो रिस्पेक्टफुल हो जाती हैं। मुझे मुश्किल नहीं होता आपके प्रति कोई अच्छी भावना पैदा करना, विच इज द बिगेस्ट अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द सोल। और मैं तो ये समझती हूँ इसके बिना हम चल भी नहीं सकते जिंदगी में।
जी दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात हमें पता चली कि हम ऊपरी आवरण से ही शायद इतने ज्यादा डिफरेंशिएशन के चक्कर में आ गए हैं। हमने बहुत सारे अंतर और भेद पैदा कर लिए हैं, मगर अगर ये सत्य हमें समझ में आ जाए और हम इस पर विश्वास करके जीने लग जाएं, तो शायद एक दूसरे के प्रति प्रेम की दृष्टि रखना मुश्किल नहीं होगा। और अध्यात्म का तो पहला पाठ ही प्रेम है। दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और इस पर तो शायद हम में से किसी ने भी विचार नहीं किया होगा। हमारे बीच में काफी सारे दर्शक हैं दीदी, जो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं।
नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम परमप्रीत है, मैं दार्जिलिंग से आया हुआ हूँ। इस शो में आपने कहा है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने आप को आत्मा महसूस कहाँ करूँ?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब मैं ये समझ जाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे एकाग्र होने में और आपकी बात को समझने में और आपके साथ डीलिंग करने में बहुत आसान होता है। आज आप किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं,
हाँ जी,
बिजनेस में अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, तो सबसे पहले एक दो को समझना होगा। मैं समझती हूँ आत्मा के ज्ञान के सिवाय ये असंभव है, इसीलिए एक छोटा सा अपने को अपनी जिंदगी के पुराने समय से शुरू से अगर आप लेके जाएं, जब भी आप किससे मिलते थे,
हाँ जी,
और जब आप उसको बात करते हैं, आप उसको सबसे ज्यादा कहाँ से महसूस करते हैं? अभी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ एंड आई सी योर शूज, आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि शूज को देख करके क्या मैं महसूस कर सकती हूँ आप कितने अच्छे हैं? या आपकी शर्ट का कलर देख के?
नहीं,
तो हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन हम हमेशा ही चेहरा देख करके महसूस करते थे
जी।
और उस चेहरे में भी आईज को देख,
आंखें ज्यादा देखते हैं,
और ये जो आईज के अंदर में भी लाइट। तो आत्मा जो है वो आंखों के पीछे भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। इस कारण से ही हमें हमेशा किसी को भी जब हम आंखों में देखते हैं या महसूस करते हैं तो इंट्रैक्शन करने में, कम्युनिकेट करने में सहज होता है। तो इसलिए जब भी हम किसी से बात करें, और ये याद रखें कि बात करने वाले और सुनने वाले और समझने वाले ये आत्मा है, और यहाँ पर वी डोंट हैव टू स्टेयर लाइक दैट, बट वी आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर। तो ये मुझे फिर अलग अलग मूड से बचाएगा, नहीं तो आपने क्या डाला है या आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है। अभी अभी हम लोग बहुत सालों से कई कंट्रीज में विजिट करते हैं, इंडिया में आप देखेंगे या कुछ और एशियन कंट्रीज में भी, आप जब बात करते हैं तो लोग अच्छी तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि वो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में वो एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन सुन रहे हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं बातचीत करने में दूसरे के एक्सप्रेशन पर, क्योंकि आप उसको फेस समझ रहे हैं, सो देन यू कांट कम्युनिकेट विद अदर कॉन्टिनेंट्स एट ऑल,
क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा और आप उसके आदि हो चुके हैं,
यू कांट। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये आत्मा है एंड यू कैन इजिली गो इन टच विद एनीवन, और ये ना करने से आप 20 साल भी रह करके किसी के साथ आप रिलेशन में रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए, काम करिए, फिर भी आप कहेंगे कि मैं तो साल हो गए लेकिन मैं तुमको समझ नहीं सका हूं। तो ये कंप्लेंट भी इसलिए क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस शरीर के अंदर भृकुटी में जो रहने वाली आत्माएं जो आंखों से हमें अपनी महसूसता कराती है नहीं है। सो हम बहुत टाइम लगाते हैं एक टच में आने के लिए, वी डोंट टच द सोल, और वो फिर सोल से बात ही नहीं की तो वो सुनेगी कैसे
जी।
और फिर कहते हैं मैंने तो एक घंटा बोला मेरी बात उसने समझी नहीं, क्योंकि आपने आत्मा को सुनाई नहीं ना। आत्मा को सुनाने के लिए आत्मा को देखना जरूरी है, और हम तो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं
आउटर
इसलिए
बॉडी से
जी।
दोस्तों ये बड़ी समझ की बात है क्योंकि आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन यदि आत्मा से बात करनी है और खुद को आत्मा समझना है तो ये बुद्धि के अंदर या समझ के अंदर एक निश्चय करना होगा कि हाँ हम आत्मा हैं और हमारा नाता भी आपस में रूहानी है या आत्माओं से है। दीदी आप जो बातें बता रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं और बहुत नई है हम सब के लिए।
यस, और नई होते हुए भी ये हमारे अंदर इस रूप में थी लेकिन हम उसको ज्ञान के रूप में नहीं जानते थे, इसलिए जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो इससे हमको बहुत नेचुरल फीलिंग आती है, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि हम कोई आर्टिफिशियल अभ्यास कर रहे हैं। बाकी ये बात जरूर है कि सारे दिन के अंदर जब हम किसी से भी मिलते हैं पहले पहले फर्स्ट थॉट हम चेक करें, फर्स्ट थॉट कि मैंने बात करना शुरू किया क्या मुझे याद है कि ये आत्मा है, फर्स्ट थॉट जस्ट द सिंपल अटेंशन
जी।
क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती है
हाँ जी
उसको याद करना पड़ता है। अब जैसे मेरे फादर अभी नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं
जी,
अब वो नहीं है वो मुझे करेक्ट नहीं कर सकते लेकिन जो सिखा करके गए हैं वो मुझे वो याद करना पड़ता है। ऐसे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती तो नेचुरली मुझे याद करना पड़ेगा
जी।
बस ये मेहनत है।
ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया और इस उदाहरण के हिसाब से विचार करना बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं हो जाएगा, बस अटेंशन बनी रहे जैसा आपने
जी,
कहा
जी।
दीदी एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि अगर हम आत्माएं हैं या मैं आत्मा हूं आप आत्मा हैं तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो आत्मा की कार्य प्रणाली क्या है।
बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हम इसको महसूस करते हैं तो हम स्थिति में ज्यादा रह सकते हैं और जितना ज्यादा हम स्थिति में रहेंगे उतना हमारी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं और स्पीड जो है उनकी कम रहती है। तो अभी आप जब यहाँ आए ब्रेकफास्ट करके आए थे
जी,
करके आए थे, जबान को तो आप धो के आए, दांतों को भी धो के आए, तो याद किसने रखा?
हमारे दिमाग ने।
दिमाग ने, तो दिमाग कहाँ है? जबान ने तो याद नहीं रखा ना, दांतों ने तो याद नहीं रखा, आपने उसको वॉश आउट कर दिया। अच्छा आपको कैसा लगा था ब्रेकफास्ट?
अच्छा था दीदी।
अच्छा लगा ना?
हाँ जी।
तो किसको अच्छा लगा, किसने कहा, क्या जबान ने कहा अच्छा लगा, आपने कहा अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? तो जब हम ऐसा प्रश्न अपने से करते हैं
जी
कि मैंने कल कोई चीज खाई और आज मेरे से पूछा जाता है क्या खाया, तो मैंने याद रखा और आज मैं यहां पर बैठी हूं, इस चेयर पर बैठी हूं, क्या ये चेयर ऑब्जेक्शन करेगी?
नहीं।
चेयर कहेगी कि यहां पर आप क्यों बैठे हो, ये तो किसी और की है? नहीं, क्योंकि चेयर के अंदर मेमोरी नहीं है।
हाँ जी।
चेयर ये नहीं कहेगी कि आई एम वेरी हैप्पी यू आर सिटिंग ओवर मी, आप कहेंगे आई एम हैप्पी टू सी यू। तो ये जो फीलिंग्स, अच्छा लगना या अच्छा ना लगना
जी,
ये है मन।
ओके।
तो हम आत्मा जब फीलिंग्स क्रिएट करते हैं इसका नाम है मन, और जब हम कोई काम के लिए डिसीजन लेते हैं, आप सुबह तैयार हुए, मैं कौन सी शर्ट डालूं, ब्लैक डालूं या व्हाइट डालूं, फिर सोचा कि हाँ अच्छा है लाइट का कंट्रास्ट होना चाहिए तो ब्लैक ज्यादा अच्छी लगेगी, तो ये है बुद्धि। जब मैं निर्णय लेती हूँ, ये है बुद्धि।
आत्मा ही निर्णय ले रही है तब उसे बुद्धि कह रहे हैं।
उसका नाम है बुद्धि। और फिर जब करने के बाद मैं उसको किसी के पूछने पर वो बताती हूँ, वो याद रखती हूँ, ये है मेमोरी। सो मेमोरी बनते बनते फिर हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो मन अर्थात सोच, बुद्धि अर्थात निर्णय, एनालिसिस डिस्क्रिमिनेशन और मेमोरी, इन तीनों चीजों का होना ही आत्मा का होना है, आत्मा का फंक्शन करना है। तो जब ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं, तो आत्मा शरीर में नहीं है। अगर आप किसी डेड बॉडी को आप यहां लटा दीजिए या फिर वहां जाए वहां लटा दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे आप कहेंगे आप यहां नहीं वहां बैठिए, तो फर्क पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिसीजन, बुद्धि, फीलिंग्स, मेमोरी, दिस इज हाउ द सोल फंक्शंस।
यही तीनों का तो चक्र चलता रहता है अंदर।
जी, इसी को ही हम कर्म और एक्शन, संकल्प कर्म और एक्शन साइकिल कहते हैं, संकल्प कर्म साइकिल कहते हैं। और इसके आधार से ही हमारा पर्सनैलिटी, हम सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग बनती है।
जी, जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हम निर्णय कर रहे हैं
जी,
और उनके आधार पर जो हमारे अनुभव या स्मृतियां बन रही हैं।
एग्जैक्टली
उस तरह से हमारे व्यक्तित्व, जिस तरह से आप कह रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है।
और ये बहुत वंडरफुल बात है कि आत्मा लाइट है।
हाँ जी,
बिंदी है, एनर्जी है। तो अंतर क्यों है हम सब में? वो इस कारण से है क्योंकि हम सबकी जो ये मेमोरी ट्रैक्स हैं, जो हमने कर्म करते करते अपनी रिकॉर्डिंग बना ली है, वो अलग है। तो इट्स लाइक अ चेक।
जी दीदी, ये तो बहुत ही कमाल की जानकारी है जो आज आपने हमें दी है। हम कौन हैं हमें यही नहीं मालूम था। एक तरह से एक भ्रम में जी रहे थे हम कि मैं अपना नाम सोच करके अपने व्यवसाय से ही अपनी पहचान बता रहा था। और ये और भी ज्यादा कमाल की बात है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी हम जो भी व्यक्तित्व बन रहे हैं, उसका कारण हमारी सोच और हमारे निर्णय हैं।
जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से दीदी, कि इतनी अच्छी, इतनी अद्भुत जानकारी आपने हमें दी, अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच में आए। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, कहा जाता है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और यही कारण है कि शायद हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म का पहला पाठ ही यह है कि हमारा सच क्या है, हम कौन हैं। जो कि हमें आज पता चला, हम एक आत्मा हैं। और आज तक तो किस झूठ में जी रहे थे, किस भ्रम में जी रहे थे, शायद यहीं से झूठे अभिमानों का जन्म होता है। आज की कड़ी में मिली जानकारी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा मैं समझता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032361।